आगे रखा है, पवित्रता में भी कन्याएं आगे रहती है, लेकिन ये संगम युग में कुमार के रूप में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होना ये बहुत 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 भाग्य की बात है। क्या है, अगर आप भाइयों को मिलेंगे, गृहस्थी भाइयों को मिलेंगे, तो आमतौर पर वो आपको यही कहेंगे कि अगर मुझे शादी के पहले ज्ञान मिला होता तो मैंने कभी शादी नहीं की होती। तो जो शादी करने जा रहे हैं, पहला मोबाइल सभी ऑफ करके रखो, जो शादी करने जा रहे हैं वो ये मैसेज अवश्य सुने कि गृहस्थी लोग क्या कहते। वो तो कहते कहां से शादी किया और मुसीबत में फंस गया। कुमारों का भी क्या होता है, ये ईश्वरीय ज्ञान जो होता है ना, बाबा का क्या होता है, लौकिक दुनिया में इलेक्शन होता है, लौकिक दुनिया में क्या होता है, इलेक्शन होता है, और जो इलेक्शन जीत करके आते हैं उन्हें इलेक्टेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्टेड। वो आमदार होते या खासदार होते, एमएलए होते अथवा एमपी होते, तो वो होते इलेक्टेड, फिर भी उनको कितना नशा होता है, उनके नाम के आगे क्या लिखना पड़ता है, आमदार फलाना फलाना, अगर नहीं लिखेंगे तो गुस्सा आता है उनको, समझा, नहीं आगे लिखा तो कम से कम पीछे तो लिखना पड़ता है एमएलए करके, तो उनको तो इलेक्टेड को कितना नशा है। और उनकी मुदत फिक्स है, क्या है, कुर्सी 5 साल की है, 5 साल के बाद कंपलसरी नीचे उतरना ही है, जबकि 5 साल के बाद उतरना ही है, फिर भी 5 साल के लिए उनको कितना नशा होता है कि हम क्या है, इलेक्टेड है। और हमारा क्या है, हम इलेक्टेड नहीं है, हम सिलेक्टेड है। हम कौन है, सिलेक्टेड है, और सिलेक्ट हमको किसने किया है, सिलेक्ट हमको डायरेक्ट परमात्मा ने सिलेक्ट किया है। तो जिसको परमात्मा ने सिलेक्ट किया है उसको कोई कैंसल कर सकता है क्या, किसकी ताकत है क्या उसको कैंसल करने की। तो बाबा ने एक वाणी में बहुत सुंदर कहा था, मुझे बाबा की एक्शन भी याद है, अव्यक्त बाबा की, अव्यक्त बाबा ने कहा था, मेडिटेशन हॉल में बाबा आए थे, तो उस समय बाबा ने कहा था कि हे बच्चे, अगर मुझे मेरे किसी बच्चे के द्वारा कुछ कार्य करवाना है, अगर मुझे किसी बच्चे के द्वारा कुछ कार्य करवाना है तो वो बच्चा और मेरे बीच में अगर कोई आता है तो मैं उसको दो दो हाथ से बाजू को हटा देता हूं और बच्चे के द्वारा मैं वो कार्य करवा के लेता हूं, समझा। अगर बाबा को करवाने का है तो बाबा करवा कर ही लेता है। इसीलिए कुमार जीवन में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होना ये बहुत 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 बड़ी उपलब्धि है। अगर समझो आपकी शादी हुई होती और आप ज्ञान में आते तो उल्टी सीढ़ी का चांस ही नहीं है ना। गृहस्थी को कुमार बनने का अधिकार है क्या, और वो कोई चांस ही नहीं उसको बनने का। हाँ, कुमार गृहस्थी बन सकते हैं, समझा। कई कुमार ऐसे होते हैं कि पहले हमारे जमाने में क्या होता था, कुमार बहुत थोड़े होते थे, बहुत थोड़े कुमार होते थे, और अगर किसी एक कुमार ने भी अगर शादी का पार्ट बजाया, माना उसका चालू हुआ शादी का, तो सारे तरफ हलचल हो जाती थी। हम 8-10 कुमार इकट्ठा रहते थे, और इकट्ठा पढ़ाई के समय भी इकट्ठे रहते थे, तो क्या होता था, एकादा कुमार भी अगर कुछ मिस हो जाता था, रात को हम देखते थे कि भाई कौन अभी तक नहीं आया, 10 के बाद कौन अभी तक नहीं आया, तो समझो 8 कुमार रहते हैं और एक कुमार नहीं आया तो बाकी के सोचते थे देखेंगे कब आता है, समझा। और जब वो 12 के बाद आता था तो सभी उठ करके कहती थी क्या पिक्चर देखा क्या, तो सभी का जैसे उसके ऊपर क्या होता था, पहरा होता था। और उस समय कोई एक कुमार भी, अगर एक कुमार भी शादी की बात करता था या शादी करता था तो बहुत बड़ा हंगामा, मास मास तक सारा हंगामा। आपको पता है क्या, इसने शादी की उसने शादी की, तो उसकी शादी का ढिंढोरा चारों तरफ बजता था। एक बार फिर क्या हुआ, हमारे का अच्छा पक्का कुमार था, उसने शादी किया, फिर हम लोगों ने बहुत सीरियस होकर दादी को बताया, जानकी दादी को, बहुत सीरियस की दादी, वो इतना पक्का आता था, पहले लाइन में आपको बिठाते थे। तो उसकी क्या हो गई, शादी हो गई, वो तो चतुर्भुज बन गया, लक्ष्मी नारायण बन गया। तो सब, तो फिर उस समय दादी ने हमको क्या कहा, दादी ने कहा अरे क्यों डरते हो, भले गया ना जाने दो, समझा, कुमार है भले गया ना तो जाने दो, क्या करेगा, जा जा के कहां जाएगा, संख्या बढ़ा के वापस आएगा, जाएगा कहा। और ऐसे होता है, कुमार क्या होते, ज्ञान में पक्के चलते हैं, फिर नहीं चल पाते कोई बात कमजोरी के कारण, शादी करते हैं, फिर क्या करते हैं, चलते ही तो अकेले चल रहे थे, अभी वो बीबी को भी लेकर के आते हैं और योगेश और योगिता को भी लेकर के आते, उनके नाम फिक्स है, समझा ना, तो उनको भी ले संख्या बढ़ा करके आते जाएंगे का। कुमार जो है उनको ऐसा ईश्वरीय जीवन जीना वैसे बहुत सहज है, क्योंकि कुमार को बंधन नहीं है। कन्या को क्या होता है, कन्या भले पुरुषार्थ में कितनी भी तीखी चली जाए, लेकिन कन्या के लिए अवश्य होता है कि सात चाँद का रात, ये सात बजे के पहले, रात होने के पहले कन्या क्या होनी चाहिए, घर के अंदर होनी चाहिए, ये रिवाज चला आया है। उसके बाद भी घर वालों के संकल्प शुरू हो जाते हैं। ऐसे कुमार जो होता है वो भले रात के 12 बजे भी आया तो कोई फिक्र नहीं करता है, खाया या नहीं खाया वो भी पूछते नहीं है, उनको मालूम है कहाँ ना कहाँ खा करके आएगा करके। तो इसीलिए कुमार तो स्वतंत्र जीवन है, लेकिन फिर भी कुमार कन्या माता गोप युगल सभी पांचों प्रकार ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन सबसे कम लाइफ किसकी होती है, ईश्वरीय लाइफ सबसे कम लाइफ किसकी होती है, कुमारों की लाइफ बहुत कम होती है, समझा। माताएं सालों साल ज्ञान में निर्विघ्न होकर के चलती है, आप परसेंटेज निकालेंगे ना तो माताएं लॉन्ग टर्म ज्ञान में चल सकती है, भाई लोग भी कई समय तक ज्ञान में चल जाते हैं, युगल भी चलते, क्योंकि एक फिसलता है तो दूसरा संभाल लेता है, तो युगल तो अच्छी तरह से ज्ञान मार्ग में भी चलते, भाई चलते, माताएं चलती है, माताएं तो क्या लगन में मगन हो जाती है, तो उनको शिवाय बाबा के दूसरा कुछ होता ही नहीं है। कन्याओं के लिए भी बहुत सहज है, थोड़ी सी कन्या बड़ी हो जाती है तो झट सेंटर पर रहना शुरू करती है। जिस कन्या का हमने कोर्स कराया है वह हमारी दीदी बन जाती है, मधुबन के लिए उसके पास से हमको चिट्ठी लेनी पड़ती है, कन्याओं की तो लॉटरी खुल जाती है, और वो इतने जल्दी झट सेंटर पर जाएंगी तो साल भर में दीदी बन जाती है, और हम सफेद बाल भी होते तो भी जल्दी दादा नहीं बनती है। तो कन्याओं के लिए तो ज्ञान मार्ग में सेंटर पर रहना, सब कुछ ऑटोमेटिक, पवित्र भोजन मिलता है, सेवा मिलती है, बड़े दीदियों का संग मिलता है, बार बार मधुबन जाने को मिलता है, लेकिन कुमारों के सामने वैसे बहुत समस्याएं आती है, विघ्न भी कुमारों के सामने बहुत आते हैं, क्योंकि हमको इस कलयुगी दुनिया में रहना पड़ता है। कुमारों, कुमार को अगर सेंटर पर रहने का है तो तो बहुत 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 परीक्षाएं देनी पड़ती है, जल्दी अलाउड नहीं किया जाता। हाँ, बहुत लेट हो जाते तो कहां ना कहां सुला देते हैं, लेकिन कुमारों को इतना सेंटर पर रहना कुमारों के लिए बड़ा मुश्किल है। और आजकल तो कुमारों को जल्दी समर्पित भी नहीं करवाते, बहुत स्टेप से गुजरना पड़ता है, बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है। कन्याओं के लिए तो झट समर्पित भी हो जाती है, तो कुमारों के लिए सहज भी है और पुरुषार्थ भी कुमार को बहुत करना पड़ता है। इसलिए तो महावीर कहा है, ऐसे फालतू टाइटल नहीं है महावीर का, समझे ना। बहुत विघ्नों को पार करना पड़ता है। पहली बात आती है खान पान की, खान पान के लिए भी कुमार के सामने बहुत समस्या। अपने हाथ से बना करके खाओ, अभी कहा ना जैन भोजन खाता हूं, समझा। तो जैन भोजन खाता है तो भी अंदर ठीक ठीक होता है कि भाई कहां ना कहां गलत काम कर रहा हूं, समझा। तो अपने हाथ से बना करके खाने का चांस मिलना वो तो भाग्यशाली कुमार की निशानी है, समझा। सभी बाबा को तो सभी भोग लगाते हैं, समझा। सेंटर पर भी शिव बाबा को भोग लगता है, गृहस्थी लोग माताएं भी घर में भोग लगाती है बाबा को। कई माताएं हैं, कई परिवार बिना बाबा को भोग लगाए खाना नहीं खाते, तो कई परिवार का भी भोग बाबा को जाता है, सेंटर का भी भोग बाबा को जाता है, मधुबन का भी भोग बाबा को जाता है और एक कुमार का भी भोग बाबा को जाता है। तो बाबा सबसे पहला भोग किसका स्वीकार करेंगे, हाँ? कुमार का भोग बाबा पहला स्वीकार करेंगे, क्योंकि पवित्र कमाई का है। क्या है? पवित्र कमाई, खुद ने कमाया है, खुद ने मेहनत किया है, खुद ने सारा मार्केट में से सामान लाया है, खुद ने खाना बनाया है और खुद खाने के पहले बाबा को खिलाने के लिए रखा है, तो जरूर बाबा पहला हाथ तो उस थाली पर ही लगाएंगे। तो पहले थाली पर अधिकार बाबा का कुमारों के है। वैसा हमारा भाग्य भी इतना महान है, लेकिन खान पान की जो बात है उसमें थोड़ा युक्ति से रास्ता निकालना है, युक्ति से रास्ता। कई क्या है, खान पान की बात को इतना इतना पकड़ लेते हैं कि बिल्कुल कहां का भी खाते नहीं, बिल्कुल अशुद्ध का टच भी होने नहीं देते हैं। और बुद्धि अगर किसी कन्या के में फंस जाती है और इधर आप अन्न की धारणा करेंगे तो बैलेंस नहीं होता है, समझा। कुमार के लिए पवित्रता पहले नंबर का सब्जेक्ट है। परमात्मा जो सतयुग का निर्माण कर रहे हैं उसका फाउंडेशन है प्यूरिटी। तो कुमार जीवन का, हमारे कुमार जीवन का फाउंडेशन प्यूरिटी ही होना चाहिए। प्यूरिटी के सब्जेक्ट में हमें थोड़ा भी कमजोर नहीं होना चाहिए। ईश्वरीय नियम और मर्यादा की पालना हमें पूर्ण रीति से करनी है। इतने सुंदर, इतने सेफर साइड, इतने सेफ्टी साइड के ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हैं कि उसका पालन अवश्य करना चाहिए। भले हम कुमार सेवा पर जाते हैं, लेकिन अगर हम बाइक पर जाते हैं सेवा पर, तो किसी कन्या को पीछे हम नहीं बिठा सकते हैं। ये ईश्वरीय नियम है। अगर कोई कुमार कन्या को पीछे बिठा करके सेवा पर जाता है तो पहले पहले उसके द्वारा ईश्वरीय नियम का भंग होता है, और विधि में ही भंग हो गया तो सिद्धि मिल नहीं सकती। अगर आई बेला पर कोई बात आ जाती है, कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं है, कोई पर्याय नहीं है, लाचारी हालत में हम ये कर सकते हैं, बाकी ये ईश्वरीय नियम के विरुद्ध है। तो इसका भी, ईश्वरीय नियम मर्यादा का कुमारों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। कहां भी कुमारों की प्यूरिटी इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि कहां भी नजर नीचे ऊपर नहीं होनी चाहिए, किसी के तरफ भी हमारा झुकाव लगाव झुकाव नहीं होना चाहिए। ये इस बात में हम फंस जाते हैं, क्या हो जाता है कि किसी कन्या की विशेष गुण उनकी विशेषताओं के ऊपर हम प्रभावित होते हैं और विशेषताओं के ऊपर प्रभावित होकर के बार बार उनका संपर्क चाहते हैं, उनके कांटेक्ट में सेवा करना चाहते हैं, उनको अच्छी अच्छी सौगात ला करके देते हैं, तो वो भी ईश्वरीय नियम का उल्लंघन है। कभी भी कन्याओं को कुमार ने सौगात देनी नहीं चाहिए। अगर आपको किसी को सौगात देनी है तो टीचर बहन के पास दो और टीचर बहन को कहो कि बहन जी मुझे ये सौगात देनी है, तो देनी न देनी वो टीचर डिसाइड करेंगे। हमको अगर हमने डायरेक्ट किसी कन्या को अगर कुछ सौगात आदि दिया तो भी ईश्वरीय नियम का बहुत बड़ा भंग हो जाता है। ये नियम मर्यादाएं हमें देवता बनाने वाली है। अरे सीता ने क्या किया? क्या होता है, नियम मर्यादा भंग होने के पहले बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो हमारा डिसीजन गलत होता है। अगर बुद्धि सही सही है, बुद्धि में सच्चाई है, बुद्धि में सफाई है, तो निर्णय रॉन्ग हो नहीं सकता है। हमारा निर्णय गलत क्यों होता है? क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। देखो कितना सुंदर प्रसंग है रामायण का, कि रावण को पता था कि सीता को कैसे फंसाया जाए। उसके लिए उसने देखा कि अभी उस झोपड़ी में राम तो नहीं है, राम बाहर चले गए हैं, तो उसने राक्षस मायावी मायावी हरिण का रूप धारण किया और वो भी गोल्डन हरिण, सोने का हरिण का रूप धारण किया माया ने। अभी सोचो सोने का आकर्षण सीता को हुआ, क्या कारण था? वो तो बहुत बड़ी पहले भी राजकुमारी थी, क्या सोने हीरे माणिक मोती कम थे क्या? वो थी राजकुमारी, उसके बाद भी वो महारानी बनी, महारानी को क्या अलंकार क्या कम थे क्या? और सबका त्याग करके जंगल में गई, फिर भी सोने का आकर्षण गया नहीं। हिरण देखा सोने का तो कहा इसकी चमड़ी मुझे चाहिए, राम तो नहीं था। और वो मायावी हिरण ने क्या किया, हे लक्ष्मण आ जाओ आ जाओ, समझा? तो वो पुकार रहा था, तो उस समय लक्ष्मण ने कहा कि सीता ये आवाज राम की नहीं है। सीता बोली राम संकट में है, आप जाओ। सीता ने तो कहा राम संकट में है, मेरे प्रभु संकट में, आप जाओ। तो लक्ष्मण ने कहा नहीं, ये मायावी आवाज है, ये मेरे राम की आवाज नहीं है। लेकिन सीता की बुद्धि खराब हुई थी, सीता ने लक्ष्मण के ऊपर बहुत आरोप लगाए कि तुम्हारी मेरे तरफ बुरी दृष्टि है, समझा? इसलिए तू यहां से जा नहीं रहा है, मेरे राम को कुछ होगा तो तू मेरे तरफ बुरी दृष्टि से देख रहा है, ऐसे इतने आरोप किए लक्ष्मण के ऊपर। तो बेचारा लक्ष्मण जो था और उसको तरस आया और उसने कहा हे सीता माई, मुझे तो मालूम है कि ये राम की आवाज नहीं है, फिर भी आप कहती हो तो मैं जा रहा हूं। लेकिन जाते समय उसने क्या किया, लक्ष्मण रेखा लगा दी और कहा कि कृपया आप इस रेखा का उल्लंघन नहीं करना। लेकिन जब रावण साधु का रूप लेकर भिक्षा मांगने को आया और सीता जो थी वो भिक्षा देने के लिए जब सामने आई तो क्या हुआ, सीता ने लक्ष्मण रेखा के बाहर पांव नहीं डाला। क्या पांव नहीं डाला? क्योंकि लक्ष्मण ने कहा था यह मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, उसने पांव मर्यादा के बाहर नहीं डाला लेकिन हाथ डाला। क्या डाला? हाथ डाला। तो उसी हाथ को पकड़ करके रावण उसको लेकर के गया। इसीलिए हमें मर्यादा का बहुत बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और अगर कुमार लाइफ अंत तक जीने का है, मैं कहता हूं आपको कितना मार्जिन है अभी, अब बहुत थोड़ा सा समय रहा है, कर करके 5-10 साल होंगे, 5-8 साल तक, उसके बाद तो कोई बात रहेंगी नहीं। तो समझो आपको पवित्रता की पालना कितना समय तक करनी है, 5-8 साल तक आपको पवित्र रहना है। आप रहेंगे 5-8 साल तक पवित्र और आपको टाइटल मिलेगा बाल ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी अभी जो 6 मास आए हैं उसको खाली 6-7 साल ही पवित्र रहने का है, और उनको टाइटल मिलेगा अखंड बाल ब्रह्मचारी। अगर थोड़े पीरियड में इतना बड़ा टाइटल मिलता है तो गंवाने का क्यों है? संकल्प भी शादी का नहीं आना चाहिए। वो क्यों आता है? क्योंकि बुद्धि कहां ना कहां फंस जाती है, किसी के विशेषता के अंदर भी बुद्धि फंसनी नहीं चाहिए, समझा? ये विशेषता उसमें किसने भरी? बाबा ने भरी। तो बाबा के ऊपर प्रभावित होने का, किसी व्यक्ति के ऊपर प्रभावित नहीं होने का, बिल्कुल नियम और मर्यादा के ऊपर ही कुमार को चलना चाहिए। अगर आपकी बुद्धि कहां फंस गई, कहां लगाव पैदा हुआ, अगर थोड़ा सा भी लगाव किसका, किसी बहन में लग जाता है, किसी कन्या में लगता है, किसी टीचर में लगता है, अगर लगाव पैदा हो जाता है तो वो लगाव जो है ना, वो लगाव कैंसर की बीमारी होती है। क्या कैंसर की बीमारी है? अगर लगाव लग गया तो वो टूटना महामुश्किल होता है, वो लगाव जाता ही नहीं है। जब भी योग को बैठेंगे तो वही रूप सामने आएगा, बाबा के चेहरे के बदले वही चेहरा सामने आ जाएगा रात दिन, समझाना? वो लैला मजनू होते हैं ना, तो मजनू को लैला भले 2 माइल पर होंगी, 2 माइल से वो मिलने के लिए आती थी लैला मजनू को, तो 2 माइल पर वो लैला है तो उसके घुंघरू की आवाज मजनू को यहां सुनाई देती थी। इतना अट्रैक्शन में ताकत होती है। इसीलिए हे कुमारो, ये काला धब्बा हमारे ईश्वरीय जीवन में कभी भी नहीं लगना चाहिए। कभी भी किसी ने हमारे तरफ उंगली नहीं करनी चाहिए, ये ना मुझे मालूम है ये क्या है, ऐसी उंगली आपके तरफ कभी किसी ने नहीं करनी चाहिए। और जब आवाज निकलता है, अगर कोई चरित्र के बारे में बात निकलती है, क्यों निकलती है? भले आपका चरित्र गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन आवाज होती है उसका कारण क्या है? यत्र यत्र धूम्रहा तत्र तत्र वन्नी ही, जहां धुआं निकलता है, जहां कहां भी अगर धुआं निकलता है तो समझने का क्या कहान का आग है, क्या अग्नि है, इसलिए धुआं निकल रहा है। इसीलिए हमारा चरित्र इतना स्वच्छ होना चाहिए, अंदर बाहर इतना स्वच्छ होना चाहिए कि कभी भी किसी की उंगली हमारे तरफ उठनी नहीं चाहिए। तो शिव बाबा को वो परम प्रिय होते हैं जो अति पवित्र बच्चे होते, पवित्रता बाबा को अति प्यारी है। तो अगर परमात्मा को, परमात्मा का प्यार प्राप्त करना है तो प्यूरिटी को पहला धारण करो, मनसा भी बड़ी, क्योंकि हम कर्म से तो अपवित्र काम नहीं करते हैं, कई बार वाचा से होता है वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन संकल्प में भी अपवित्रता इस समय नहीं होनी चाहिए। आपको अलाउड नहीं है एक बार एक टाइम था कि बाबा मुरली में कहते थे बच्चे ये विकर्म के बुरे संकल्प जो है वो तो चलते रहते, उससे कोई विकर्म नहीं बनता, ऐसे बाबा पहले कहते थे। संकल्प बुरे चलते विकर्म नहीं बनता जब तक आप बुरा कर्म नहीं करेंगे, तो बुरा कर्म करने के बाद विकर्म बनता है। लेकिन अभी इस समय बाबा कहते हैं अगर संकल्प में भी विकल्प आया, संकल्प में भी विकल्प आया तो भी पाप का खाता बन जाता है, समय समय की बात है। अगर आपको पूर्ण पवित्रता प्यूरिटी को अगर धारण करने का है तो वर्तमान समय एक बात का आपको बहुत 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 ध्यान रखना चाहिए। जो आज मैं अमृत वेले बाबा से रूह रिहान कर रहा था तो बाबा ने मुझे टच किया कि बच्चे आप समझो क्लास भी कराएंगे लेकिन एक बात अवश्य बताना बच्चों को। कौन सी बात? तो बाबा ने टच किया कि हे बच्चे वर्तमान समय, अभी का जो वर्तमान संगम युग का समय जो चल रहा है, तो वर्तमान समय में माया का जो रूप है, माया का जो रूप है, पहले क्या होता था सिनेमा कहते ना, सिनेमा माना क्या, सिन की माँ, पाप की माँ माना सिनेमा। तो मास में एक बार सिनेमा देखते थे तो भी 15-15 दिन संकल्प चलते थे, समझा। फिर माया ने देखा कि मास में एक बार सिनेमा देखेंगे तो जल्दी पतित नहीं बनेंगे, तो उसने क्या किया, थिएटर जो सिनेमा का थिएटर, पहले सिटी में सबसे सुंदर बिल्डिंग कौन सी होती थी, सिनेमा का थिएटर। तो मास में एक बार आते हैं, फिर माया ने भी सोचा ये मास में एक बार देखने से जल्दी आप पवित्र नहीं बनेंगे, तो इनको तो जल्दी जल्दी आप पवित्र बनाने का है। तो लोग थिएटर में जाने के बदले माया ने क्या किया, थिएटर को ही घर घर में बिठा दिया। अभी हर घर थिएटर बन गया है, वहां तो टिकट निकाल के पिक्चर देखना पड़ता था, यहां तो कोई टिकट निकालने की भी जरूरत नहीं है, बैठे बैठे पिक्चर देख लेते घर घर में, समझा। तो माया घर में आकर के बैठ गई, देखो माया कैसा रूप धारण कर रही है दिन प्रतिदिन, और लोग घर में ही टीवी। आज टीवी का कितना बड़ा प्रभाव है कि जवान बच्चे भी देखते हैं, बूढ़े भी टीवी को छोड़ते नहीं है। तो ये टीवी का भी माया ने देखा कि खाली घर में टीवी लाने से जल्दी ही काम बनने वाला नहीं है, अभी तो तमो प्रधान की अंतिम स्टेज पर दुनिया को लाने का है। इसलिए माया ने बड़ा सुंदर साधन बना दिया है, क्या है, बड़ा सुंदर साधन बनाया, कौन सा, ये मोबाइल का साधन, समझाना। और ये कलयुग के अंतिम समय में, कलयुग के अंतिम समय में पहले तो घर में था, अभी जेब में है, क्या है, और एक भी जेब ऐसा नहीं है कि जिसमें मोबाइल नहीं है। तो मैं मंथन कर रहा था तो बाबा मुझे कहते थे कि हे बच्चे ये ब्राह्मणों के लिए इस समय बहुत बड़ी बीमारी जो है, या बहुत धोखे का, बाबा तो कह रहा ये सांप है, क्या है, ये सांप है। अभी ब्रह्मा अपने संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर रहा है, और जब ब्रह्मा की संपूर्ण स्थिति प्राप्त होगी उसके बाद उसका शंकर के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ब्रह्मा ही शंकर बनेगा और थोड़ा कौन बनेगा। और जब वो इतनी तपस्या करेगा, इतनी तपस्या करेगा, इतनी तपस्या करेगा कि वो शंकर का रूप धारण करेगा, और उस रूप में इतनी तपस्या होती है और इतनी बड़ी ताकत होती है, पावर जो है, क्योंकि बुराई का नाश करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, अधर्म का नाश करना कोई साधारण बात नहीं है, अरे धर्म के मामले में जिसने हाथ डाला वो समाप्त हो गए। इंदिरा गांधी कितनी शेरनी थी, लेकिन जिस दिन उसने सिख के मंदिर पर हमला बोला उस रात उसको नींद नहीं आई, सारी रात वो घूम रही थी अपने कमरे में। सेक्रेटरी ने डायरी में नोट किया है कि मैंने इंदिरा जी को इतना अस्वस्थ कभी भी नहीं देखा जिस दिन उसने ऑर्डर किया था जनरल को कि अटैक करो अमृतसर के मंदिर पर, यह धर्म के ऊपर हमला था। तो उसको रात भर नींद नहीं आई और उन्हीं लोगों ने इंदिरा गांधी की भी हत्या की। तो जिसने धर्म में टच भी किया ना, भले वह अधर्म था, भले अधर्म था, तो उसको नाश करने के लिए जो जो गया उसका अंत हुआ है। धर्म अधर्म का नाश करना सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है, जो भी नाश करने को जाएगा पहला उसका ही नाश होता है। तो ये काम शंकर देवता का है और संपूर्ण रूप में बाबा जब ट्रांसफर होता है पूर्ण तपस्या करता है। ऐसी तपस्या की शंकर ने कि लोग शिव और शंकर एक ही कहने लगे। शिव और विष्णु को एक नहीं कहा गया, शिव और ब्रह्मा को एक नहीं किया, भक्ति मार्ग में क्या किया है, शिव और शंकर को एक किया, क्योंकि उसने उस रूप में इतनी बड़ी तपस्या किया है। तो भक्ति मार्ग का जो शंकर है उसके गले में सांप बांप पड़े हुए हैं, समझा। तो वो हम जो तपस्या करते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो हम तपस्वी रूप माना शंकर के बच्चे शंकर के रूप में तपस्या कर रहे हैं, तो ये सांप बाप तो हमारे पास रहेंगे। ये मोबाइल तो कंपलसरी रखना ही पड़ता है, आज की दुनिया ऐसी है, रखना ही पड़ता है। तो इसको बहुत संभल करके यूज करना चाहिए। दुधारी तलवार, दो धार की तलवार है, ये अच्छा भी काम करेंगी, सब्जी भी काटेंगी और गला भी काटेंगी, समझा, कुछ देर नहीं लगता है इसको। तो ये ऐसा साधन निकला हुआ है कि हम इसके बिगर अभी चल नहीं सकते हैं। और कुमारों को तो मोबाइल से बहुत बहुत सावधान रखना चाहिए। हमको जयंती बहन ने कहा कि लंदन में एक कुमार इतनी सेवा करता था, इतना आज्ञाकारी था, अमृत बेला भी बड़ी पावरफुल करता था, हम उसके द्वारा आगे बिठा के अमृत बेला करवाते थे। कई दिन के बाद देखा कि वो आता ही नहीं था। एक मास हुआ, दो मास हुए, तीन मास हुए, हमने इंक्वायरी किया क्यों नहीं आता है। एक दिन उसको बुलाया और उसको पूछा कि भाई आप क्यों नहीं आते, इतना धारणा युक्त कुमार, अपने हाथ से बना करके खाने वाला, इतनी सेवा करने वाला, अमृत बेला मुरली कभी मिस नहीं करने वाला कुमार, बोले आप क्यों नहीं आते। तो उसने जयंती बहन को बताया कि दीदी मैंने किसको नहीं बताया, लेकिन आजकल मैं एक बात में फंस गया हूं। कौन सी बात में फंस गया, कि मैं रात रात मोबाइल के टीवी को देखता हूं, इंटरनेट रात रात चलाता रहता हूं, फेसबुक रात रात देखता रहता हूं, और ये मुझे आदत हो गई है कि पूरी रात फेसबुक ही देखता रहेगा। तो ये कितनी बड़ी माया है। इसीलिए ये मोबाइल को यूज करते समय बहुत बहुत संभल करके इसको यूज करना है। ज्यादा बात आप सोचो, आप मोबाइल पर इतनी बात करते हो, इतने लोगों से कनेक्शन रखते हो, अभी ये टाइम ऐसा है कि कनेक्शन कट करने का टाइम है। कनेक्शन कट करो जितना हो सके, चाहे माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, दोस्त है, साथी है, सखा है, जो भी कोई है, जितना हो सके। अभी का टाइम ऐसा है कि कनेक्शन कट करने का टाइम है। अगर इनके कनेक्शन आप कट करेंगे तो शिव बाबा से कनेक्शन जुट जाएगा। आप अगर सोचेंगे हम इनसे भी कनेक्शन जोड़ेंगे और उनसे भी जोड़ेंगे, तो ये काम चलने वाला नहीं है। ने कहा ना, प्रेम गली, परमात्मा की जो गली है ना, प्रेम गली अति साकली, जिसमें दो ना समाए। ये प्रेम गली है ना शिव बाबा की, परमात्मा की, वो इतनी अरुंद है कि उसमें दो व्यक्ति नहीं जा सकते, एक समय एक ही व्यक्ति अंदर आ सकता है, मैं और मेरा बाबा, उसके सिवाय कोई भी आप साथ में ले नहीं सकते हैं, कोई भी साथ में नहीं चाहिए। अगर कोई साथ में नहीं चाहिए तो क्यों बार बार किसी से कनेक्शन रखते हैं, समझा ना? वो कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, कितना व्यर्थ हो जाता है। एकांत का अनुभव हम कब करेंगे, एकांत का अनुभव कब करेंगे, अंतर्मुखता का अनुभव कब करेंगे? कम से कम वर्तमान समय कुमारों ने यह अवश्य करना चाहिए। जैसा हम मौन रखते हैं ना, तो ये फिक्स करो कि दो दिन मैं मोबाइल यूज नहीं करूंगा। क्या होता है देखो, क्या शुरू एक दिन से करो, आज ये 24 घंटे में मोबाइल को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, देखो क्या क्या होता है। जब टाइम आता है रात को सोने का तो मोबाइल याद आता है, और सोने के पहले बाबा की गोद में सोने के बदले वो मोबाइल के मैसेज पढ़ने में ही नींद लग जाती है, तो क्या अमृत बेला होंगी, समझा? तो ये ट्राई करो कि कम से कम एक दिन, दो दिन, तीन दिन भले नई मोबाइल यूज करेंगे, क्या होता है देखेंगे हम, और उस समय आपकी परीक्षा होगी, उस समय आपकी परीक्षा होगी कि आप कितना नष्टो मोहा बने हैं। जिसका मोह है वो उसके सिवाय बात करने के सिवाय रह नहीं सकता है, समझा? वो बात करेगा ही किसी भी हालत में, अपना मोबाइल यूज नहीं करेगा तो दूसरे के पास जाएगा यूज करने को, समझा? ये प्रैक्टिस करो, कुमार को इस समय ये धारणा समझो, ये मेरे गले में सांप ही है, ये सांप के दांत निकाल लो, समझा ना? इसके दांत जो है ना, ये दांत निकालो, हाँ? फिर कितना भी काटेगा तो कुछ नहीं होगा, समझा ना? बाकी ये गले में डालना, ये शंकर का रूप है, तपस्या का रूप है, अगर सांप नहीं डालेंगे तो लोग आपको शंकर भी नहीं कहेंगे, समझा? तो ये तो कलयुग का टाइम है, अंतिम समय, वो तो डालना ही पड़ेगा, डमरू बजाना ही पड़ेगा, त्रिशूल हाथ में रखना ही पड़ेगा, तपस्या का रूप धारण करना, एक टाइम ही ऐसा है। लेकिन इस बात में फंसने का नहीं है, क्योंकि मुझे भी रहम आता है, कोई जब बार बार मोबाइल को यूज करते हैं तो मुझे उनके ऊपर रहम आता है, ये कब बीज रूप अवस्था का अनुभव करेंगे, ये कब बिंदु रूप अवस्था का अनुभव करेंगे, ये कब कर्मातीत अवस्था का अनुभव करेंगे, कब करेंगे, सोचो ना। एक दिन में सैकड़ों लोगों से अगर बातचीत करते रहेंगे और आपको बाबा ने कहा एवर रेडी रहो, एवर रेडी का अर्थ क्या है, एवर रेडी किसी भी टाइम ऑर्डर आएगा तो ऊपर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा अभी का टाइम है, बोल नहीं सकते। हम बताता हूं, मैं हमारा एक साथी रहा, साथी इतना समय हमारे से बचपन से लेकर के ज्ञान में चल रहा था, और खुद डॉक्टर एमबीबीएस था, हॉस्पिटल थी अपने, हमारे साथ में रहते थे, और क्या हुआ, रात को सोया और सवेरे उठा ही नहीं, समझा ना? तो थैंक्स गॉड करो कि जिसने सवेरे उठाया आपको, अगर नहीं उठाए तो क्या करते आप, समझे ना? भगवान का थैंक्स क्यों करना पड़ता है, क्योंकि सुलाता है और उठाता भी है। तो इसीलिए कभी बाबा किसको बुला लेगा वो बोल नहीं सकते हैं, और कुमार तो बहुत प्यारे हैं बाबा को, बाबा ने, बाबा का एक अव्यक्त महावाक्य बहुत अच्छा है कि मुझे नई दुनिया के कार्य के लिए जब भी किसी की जरूरत पड़ती है तो भले वो कहां पर भी हो, किसी भी पोजीशन में हो, मैं वहां से उसको उठा लेता हूं, समझा ना? तो आपको कब आपका नंबर लगेगा बोल नहीं सकते, किसका नंबर किसको कहां से बाबा उठा लेगा बोल नहीं सकते, इसीलिए एवर रेडी रहना है। और एवर रेडी किसको कहेंगे, एवर रेडी माना संपूर्ण विकारों के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने काम क्रोध मोह सबके ऊपर विजय प्राप्त की है और अगर लोभ है मुझे संपत्ति का, किसी का संपत्ति में इतना लोभ होता है किसको भी नहीं बताएंगे कि बैंक बैलेंस क्या है। बहन जी कितना भी बोले सब बताएंगे, सब सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बैंक बैलेंस कभी किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें मोह है वो धन के अंदर, वो संपत्ति के अंदर। तो अगर हमको एवर रेडी बनने का है तो एक भी विकार अलाउड नहीं है, काम के ऊपर भी 100% जीत होनी चाहिए, आपका कहां भी लगाव और झुकाव नहीं होना चाहिए, कहां भी लगाव और झुकाव, जहां लगाव होता है वहां झुकाव भी होता है, इसीलिए कहां भी लगाव भी न हो झुकाव भी न हो, किसी के प्रति ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या भी बहुत बड़ी बीमारी है, और ईर्ष्या जिसको आती है ना उसका ये हाल होता है कि बात मत पूछो, रात दिन जलते रहता है, ईर्ष्या की आग बड़ी खतरनाक होती है, समझा। और एक बात याद रखो कि ईर्ष्या कभी भी बड़ा और छोटा इसमें कभी भी ईर्ष्या नहीं होती है, ईर्ष्या किस में होती है, समानता में ईर्ष्या होती है, वो भी चार कुमार है मैं भी पांचवा कुमार हूं, तो पांचों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की संभावना अधिक होती है। अगर पांच कुमार ज्ञान में चल रहे हैं और एक कुमार को अगर स्टेट सेक्रेटरी बनाया तो चार की हालत खराब हो जाती है, समझा। अरे ये स्टेट सेक्रेटरी बना क्या समझता है अपने आप को, बहन जी के ज्यादा ज्यादा आगे करता है इसीलिए स्टेट सेक्रेटरी, हमको मालूम है, समझा। तो ये ऐसे संकल्प शुरू हो जाते और ईर्ष्या की आग जो है वो खत्म नहीं होती है, बड़ी खतरनाक। ईर्ष्या के कारण क्या होता है, निंदा करना आरंभ हो जाता है, पर चिंतन शुरू हो जाता है, पर चिंतन के कारण पतन शुरू हो जाता है, इसीलिए कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। जो है अपने जगह पर ठीक है, मैं भी अपने जगह पर ठीक हूं, ये ठीक हो। अगर आपके दिल के अंदर सच्चाई सफाई अगर आपके अंदर है तो आपका भी दिन जरूर आने वाला है, थोड़ा इंतजार करो, वेट एंड सी, जरा दम 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 धरा, समझा ना। सो एकदम आता काय झालं ये ना मला कधी, अरे तुमचा तुमचाही नंबर लागेल, समझा ना, आपका भी नंबर लगने वाला है, वेट एंड जरा दम दम तर धरा, दम बड़ी चीज है, क्या है, दम बड़ी चीज है, जरा दम धरा, तुमचाही नंबर लागेल, तुम्हाला बहन जी सेक्रेटरी बनवतील, नाही या बहन जीनी बनवलं तर दुसरीकडे ट्रान्सफर होईल, ती बहन बनवील, काय पद कुठे जाणार, नाही थोडं दम धरलं पाहिजे, सगळ्याला मिळतं। मुझे याद है कि क्या हुआ था, जानकी दादी ज्ञान योग में बड़ी पावरफुल थी, समझा। तो दादी दादी को भारत से बहुत डिमांड होता था, हैदराबाद दिल्ली कलकत्ता बेंगलोर, जानकी दादी को बहुत डिमांड थी, और पूना में क्या 25-30 लोग ही दादी के सामने, और वही चेहरे कितना भी चढ़ाओ वहीं रहते थे। तो दादी बोली वही चेहरे है और वह स्थिति भी कदम ताली है, कोई फास्ट से जाने वाले नहीं थे। तो दादी ने एक दिन साकार बाबा को पत्र लिखा कि बाबा मुझे बेंगलोर से निमंत्रण है, कलकत्ता से है, दिल्ली से है, तो मैं वो बेहद सेवा के लिए जाना चाहती हूं। तो बाबा को पत्र लिखा, तो साकार बाबा ने मधुबन से पूना में पत्र भेजा दादी को। दादी को ये पत्र बाबा ने भेजा कि बच्ची तुम पूना के ज्ञान झूले में झूलती रहो, तपस्या करती रहो, यही तपस्या करती रहो, और एक दिन ऐसा आएगा कि बाबा तुमको उठा लेगा, एक दिन बाबा तुमको उठा लेगा, ये बाबा ने दादी को, हमको दादी ने पत्र पढ़ करके दिखाया, देखो मैं तो अभी इतना नहीं चाहती लेकिन बाबा मेरे को यहां बिठाना चाहता है। तो दादी ने इतनी तपस्या किया, इतना तपस्या किया कि रात को 2 बजे दादी उठती थी, हर रोज रात को 2 बजे उठती थी और कहती थी 2 से 8, सवेरे 2 से 8 बजे तक एक भी फोन दादी नहीं उठाती थी, बोलती ये मेरा परमात्मा को दिया हुआ अपॉइंटमेंट टाइमिंग है, कितना, रात के 2 से 8, और कारोबार 8 के बाद शुरू होता था। तो इतनी लगातार तपस्या दादी करती थी। हमने कहा दादी आप बराबर रात को नींद लास्ट में 12-12 भी बजते सोते सोने को होते थे, तो आप बराबर 2 बजे कैसी क्या उठती हो? तो दादी ने कहा मैं कभी भी 2 बजे नहीं उठती हूं, जब मैं उठती हूं तो घड़ी में 2 बजे होते हैं। मैं नहीं उठती हूं बोले, माना वो शरीर को ऐसी आदत लग गई है कि एक्यूरेट 2 बजे आंख खुलेंगी। दादी ने कहा भले मैं कितनी भी बीमार होंगी और आप कभी भी आकर के देखो तो 2 के बाद मेरी आंखें कभी भी बंद नहीं होंगी, कभी भी बंद नहीं होंगी, वो जागृति रहेंगे। तो ऐसी दादी ने तपस्या किया। और याद है जब वो टाइम आया, जब टाइम आया 1974 का, तो 74 में क्या हुआ, विदेश सेवा लंदन का निमंत्रण आया था, जाने का था। तो बड़ी दीदी आदि ने 2 बहनों का, गंगे दादी और 2 बहनों का प्रोग्राम बनाया था, टिकट निकाला था, और बाबा के कमरे में विदाई लेने की थी। और बड़ी दीदी गई उनके साथ और दीदी ने कहा कि बाबा ये 3-4 बहनों का ग्रुप लंदन में सेवा के लिए, विदेश सेवा के लिए जा रहा है। तो बाबा ने कहा बच्ची विदेश सेवा पर तो जनक बेटी जाएंगे। तो दीदी बोली जनक, बाबा वो जनक तो 1 साल से खटिया पर सोई हुई है। तो बाबा ने कहा खटिया के साथ भेजो। तो क्या है, जब समय आया ना, जब समय आया तो दादी गई विदेश सेवा पर, और दादी ने कितनी सेवा करके दिखाया। तो दादी ने वेट किया ना, क्या किया, तिथे दादी हुहू कहला से नहीं नहीं मैं कलकत्ता पाठवा, मुझे दिल्ली को ही भेजो, मैं तो ऐसी हूं, मैं तो वैसी, मैं तंग आ गई, ऐसा कुछ कहा नहीं, समझा, वेट एंड सी, आपकी भी डेट आने वाली है, तुमसे दिवस बदलते, हर कुत्ते के भी दिन बदलते हैं ना, दिन बदलते हैं, एक सारखे दिवस राहत नहीं, समझा, एक सारखे दिवस राहत नहीं, दिन बदलते हैं। तो इसीलिए थोड़ा वेट एंड सी, आपको भगवान ने जिसको चुना है ना, जिसको चुना है उनको उस आत्मा के द्वारा विशिष्ट काम करवाने का होता है, ऐसे ही नहीं आपको सेलेक्ट किया है, समझा, आपके द्वारा उनको कुछ काम करवाने का है, लेकिन उसकी डेट फिक्स है, उस दिन वो आपको उठाएगा और आपके द्वारा काम करेगा। तो डेट आने तक तो वेट करना चाहिए ना, समझा, वेट करना चाहिए। कुमारों, कुमार ज्यादा वेट नहीं करते हैं, समझा, कुमार की गाड़ी हमेशा फास्ट फास्ट स्पीड में होती है। लेकिन ये याद रखो स्पीड वाली गाड़ी है हमारी, और अभी 30-30 साल भी ईश्वरी ज्ञान में बहुत हुए, 20-30 साल हो गए। और जब हम शुरू में ज्ञान में आए थे ना, जब हम शुरू में ज्ञान में आए और इस रफ्तार में चलना शुरू किया, संगम के रेस में हम चल रहे थे, तो हमारे पास 2-व्हीलर थी, 2-व्हीलर गाड़ी थी, हम स्पीड से मार काटते जा रहे थे, बहुत फासला हमने तय किया। लेकिन अभी समय जाने के बाद अभी हमको 2-व्हीलर के बदले 4-व्हीलर मिल गई है, अभी क्या मिल गई है, 4-व्हीलर मिल गई है सबको। एक बात याद रखना कि जो 4-व्हीलर होता है, 4-व्हीलर को 2-व्हीलर होती है तो रिवर्स गियर नहीं होता है, होता ही नहीं है रिवर्स गियर। लेकिन 4-व्हीलर को क्या चाहिए, हाँ, हाँ, फोर व्हीलर को रिवर्स गियर कंपलसरी होना चाहिए। तो हम जो ईश्वरीय जीवन में चल रहे, अनेक आत्माओं के संपर्क में, पुराने नए बहने भाई सबके संपर्क में आते हैं, तो हमारे गाड़ी को क्या चाहिए? रिवर्स। बहनों से कभी भी झगड़ा नहीं करने का, ये कुमारों को अंडरलाइन करके रखो। दादी जी हमको ये पाठ अवश्य पढ़ाती थी। दादी जी कहती थी, जब कोई कुमार ऐसा झगड़ा होने का टाइम आता था तो दादी कहती थी, देखो याद रखो, हम है हंडे, हम है हंडे, आप हो मटके। चाहे मटका हंडे पर गिरे या हंडा मटके पर गिरे, फूटने वाला कौन है? फूटने वाला मटका ही है। अगर हम मटके हैं तो संभल के रहो, समझा ना। हंडे से पाला नहीं लो, समझा ना। अगर हंडे से लड़ेंगे तो फूटेंगे कौन? मटका ही फूटने वाला है। तो अपना मटका जरा सेफ रखो, समझा ना, थोड़ा साइड का रखो। कभी भी टक्कर टक्कर होने नहीं देने का। अपनी गाड़ी संगम युग पर न्यू ब्रांड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? न्यू ब्रांड। कहां भी धक्का नहीं लगाना चाहिए, कहां भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। अगर संगम युग पर आपका अगर किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया तो मुंह ही खराब हो जाता है। क्या होता है एक्सीडेंट की गाड़ी का? मुंह ही खराब हो जाता है, कुछ ना कुछ टूट फूट जाता है। और एक्सीडेंट वाली गाड़ी को कितना भी दुरुस्त करो, कुरकुर कर कर चालू ही रहती है। तो कहां धुआं फेंकेंगी, कहां बस्ट हो जाएंगी, कहां फेल होंगी पता ही नहीं। इसीलिए अपनी गाड़ी न्यू ब्रांड रखने का, कभी किसी से टक्कर नहीं खाने का। चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे नया हो, चाहे पुराना हो। सी फादर एंड मदर, नॉट ब्रदर एंड सिस्टर। बाबा मम्मा को देखो, बाकी भाई बहनों को नहीं देखो। और क्या होता है, कभी कभी हो सकता है कि महारथी से भी कुछ गलती हो सकती है, महारथी से भी एक आध बार गलती हो सकती है। फिर हम वही पकड़ लेते हैं कि इतना बड़ा महारथी है, फिर इन्होंने ऐसी गलती क्यों किया, इन्होंने ऐसी गलती क्यों किया। तो बाबा क्या कहता है, अरे वो महारथी में इतनी ताकत है कि वो उसके गलती को दुरुस्त करके भी आगे जा सकता है। उसने तो गलती को दुरुस्त, किसी से टकराव, ऊंची आवाज में भी बात नहीं होना चाहिए। योगी शीतल काया वाले होते हैं। योगी कैसे होते हैं? काया उनकी शीतल होती है, बात बात में गर्म होना जा। नम्र योगी विनम्र होते हैं, योगी गर्म नहीं होते हैं। इसीलिए कभी गर्म भी नहीं होना है, बड़ा नम्र चित्त रहना है, संभल करके संगम युग में चलना है, और संभल करके मोबाइल को भी यूज करना है। अभी टाइम ऐसा है कि ये सांप को जेब में रखना पड़ रहा है, इसलिए बहुत संभल करके जितना कम से कम यूज करो उतना अच्छा है। काम के लिए यूज करो कछुए के जैसा, खाने का है तो मुंह बाहर, चलने का है तो पांव बाहर, नहीं तो अंदर करके रखो। मिनिमम मोबाइल को यूज करेंगे तो ही हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे, समझा। अगर मोबाइल के, ये माया है, बहुत बड़ी माया है, और घर में जेब में घुस गई है माया। अभी इससे कैसा निकलने का आप अपना प्लानिंग करो, आप अपना प्लानिंग बहुत अच्छा कर सकेंगे। मैं मोबाइल के पीछे कितना टाइम देता हूं वो तो देखो ना, कितना टाइम देता हूं। और ये पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना हो सके कनेक्शन जो है ना वो कम से कम कट करने चाहिए। जो भी चाहे किसी का, ऐसी आपकी स्थिति होनी चाहिए कि आपको किसी का फोन नहीं आना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हाँ, अगर आप ही नहीं करेंगे तो वो भी आपको नहीं करेंगे ना। और इसीलिए अगर हमको अव्यक्त बनना है, अगर हमको संपूर्ण बनना है, पूर्ण विकारों पर विजय प्राप्त करना है, एवर रेडी बनना है, तो इन बातों की संभाल हमें अवश्य रखनी है। हमारे ब्राह्मण जीवन पर कोई भी कलंक नहीं होना चाहिए, कपड़ा बिल्कुल साफ होना चाहिए, रिकॉर्ड बिल्कुल साफ होना चाहिए, ऐसी हमारी चलन होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।